एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास की।
हाँ बिल्कुल, हेनरी जेम्स का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी।
सही कहा, ये वो दौर था जब मतलब पुरानी दुनिया और नई दुनिया के विचार टकरा रहे थे।
और हेनरी जेम्स इसी टकराव को इंसानी रिश्तों की गहराइयों में दिखाने में माहिर थे।
जेम्स वो थे तो अमेरिकन,
हाँ, पर उनका ज्यादातर जीवन और लेखन वो यूरोप में ही हुआ। उन्हें साइकोलॉजिकल रियलिज्म मतलब मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का कह सकते हैं कि महारथी माना जाता है।
उनकी एक खास थीम थी जिसे वो अंतर्राष्ट्रीय विषय कहते थे।
हाँ, अमेरिकन मासूमियत और यूरोपियन अनुभव का जो एक तरह का संघर्ष था वो दिखाते थे वो।
और द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो 1881 में आई वो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है।
बिल्कुल,
है ना?
बिल्कुल, उनकी सबसे अच्छी कृतियों में से एक मानी जाती है।
तो आज की चर्चा का केंद्र रहेगी इसकी नायिका इसाबेल आर्चर, उसकी आजादी की खोज, उसकी कहानी के मोड़ और उपन्यास की क्या प्रासंगिकता है आज भी।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को समझना।
कहानी शुरू होती है इंग्लैंड में, गार्डन कोर्ट नाम की एक खूबसूरत शांत जगह।
हाँ, एक पुरानी सी हवेली है, बड़ा सुकून भरा माहौल, चाय का वक्त है, धीमी धीमी बातें चल रही हैं।
और वहीं हमारी मुलाकात होती है इसाबेल आर्चर से। न्यूयॉर्क से आई है बिल्कुल ताजी हवा के झोंके की तरह।
युवा है, ऊर्जा से भरी हुई, और सबसे बड़ी बात उसके विचार काफी स्वतंत्र हैं।
वो यूरोप आई है अपनी चाची मिसेस डुचेट के साथ। वो काफी अमीर हैं और दुनिया देखी हुई हैं।
लेकिन इसाबेल सिर्फ घूमने नहीं आई है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए। उसके अंदर एक मतलब आदर्शवाद है, दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है।
हाँ, यहाँ तक कि शादी को भी वो एक पारंपरिक जरूरत मानने से इनकार करती है।
उसने कहा भी है, मैं शादी करके जीवन शुरू नहीं करना चाहती, एक महिला और भी बहुत कुछ कर सकती है। ये उस समय के हिसाब से तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट था।
यकीनन, और उसकी यही बातें, उसकी बुद्धिमानी, उसका आत्मविश्वास, वो गार्डकोट के लोगों को काफी आकर्षित करता है।
कौन कौन है वहाँ?
उसके कजिन है रैल्फ टचेट, वो बीमार रहते हैं लेकिन बहुत समझदार और संवेदनशील है। फिर रैल्फ के पिता हैं मिस्टर टचेट, जो घर के मालिक हैं।
और एक पड़ोसी भी है लॉर्ड वॉरबटन।
हाँ, लॉर्ड वॉरबटन, एक अंग्रेज रईस। ये सब लोग इसाबेल की इस अलग सी शख्सियत से प्रभावित होते हैं।
और यही कहानी में पहले अहम मोड़ आते हैं। इसाबेल को पहली बार चुनाव करने का मौका मिलता है।
हाँ, दो लोग उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे विकल्प हैं।
एक तो लॉर्ड वॉरबटन है, प्रतिष्ठित है, दयालु है।
बिल्कुल, एक आइडियल अंग्रेज जेंटलमैन कह सकते हैं।
और दूसरा है कैस्पर गुडवुड।
अच्छा, वो अमेरिकी है। हाँ, एक कामयाब अमेरिकी उद्योगपति, काफी दृढ़ निश्चयी है और इसाबेल को लेकर बहुत सीरियस है।
लेकिन इसाबेल
वो दोनों को मना कर देती है।
क्यों? लॉर्ड वॉरबटन को क्यों मना करती है?
उसे लगता है कि अभी वो बंधना नहीं चाहती, उसे दुनिया देखनी है, अनुभव करना है।
और कैस्पर गुडवुड?
शायद वो उसे थोड़ा ज्यादा अधिकार जताने वाला लगता है। उसकी जो आजादी की चाह है, उसे लगता है कि कैस्पर उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनेगा।
तो ये इनकार सिर्फ इनकार नहीं है, ये उसकी पहचान का हिस्सा है, स्वतंत्रता सबसे ऊपर।
बिल्कुल, और यहीं पर रैल्फ टचेट का रोल बहुत अहम हो जाता है। वो मनी मनी इसाबेल से प्यार करता है, पर उससे भी ज्यादा वो उसकी आजादी का, उसकी सोच का सम्मान करता है।
वो चाहता है कि इसाबेल बिना किसी मजबूरी के जिए।
हाँ, और इसी ख्याल से वो एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है।
वो अपने पिता को मना लेता है।
हाँ, मरते हुए पिता को मनाता है कि वो अपनी आधी जायदाद इसाबेल के नाम कर दें।
और ये बहुत बड़ी रकम होती है।
बहुत बड़ी। राल्फ का इरादा नेक था, वो चाहता था कि इसाबेल को पैसों की चिंता ना करनी पड़े, ताकि वो, जैसा राल्फ ने कहा, अपनी कल्पना की जरूरतों को पूरा कर सके।
मतलब वो पैसों को नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जीने की क्षमता को असली अमीरी मानता था।
सही कहा। लेकिन यहीं हेनरी जेम्स एक सवाल उठाते हैं
कि क्या पूरी आजादी, खासकर जब अनुभव की कमी हो, हमेशा अच्छी होती है?
हाँ, ये जो विरासत है जो उसे आजाद करने के लिए दी गई थी, वो विडंबना देखिए उसे शिकार बना देती है।
उन लोगों का शिकार जो उसकी दौलत और उसकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हैं।
बिल्कुल, यहीं से शुरू होता है वो दुखद प्रयोग जिसका जिक्र आपने किया था, स्वतंत्रता का प्रयोग।
तो इस नई दौलत के साथ इसाबेल यूरोप घूमने निकलती है।
हाँ, पहले पेरिस, फिर इटली, फ्लोरेंस पहुंचती है वो।
और फ्लोरेंस में उसकी मुलाकात फिर से होती है मैडम मर्ल से।
जी
हाँ, वही मैडम मल जिससे वो गार्डकोट में मिली थी, बेहद सोफिस्टिकेटेड, अनुभवी, कला की जानकार, और इजाबेल उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है।
बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि मैडम मल एक आदर्श स्वतंत्र महिला है, बिल्कुल वैसी जैसी वो खुद बनना चाहती है।
लेकिन मैडम मल का ये आकर्षण थोड़ा खतरनाक है।
हाँ, वो दिखती तो गाइड जैसी है पर असल में वो एक जाल बिछा रही है। जेम्स यहाँ ये दिखावा बना मसलियत वाली थीम को बहुत अच्छे से दिखाते हैं।
मॉल का भारी रूप जितना अच्छा है, इरादे उतने ही उलझे हुए हैं।
बिल्कुल। और इसी मैडम मॉल के जरिए इसाबेल मिलती है गिल्बर्ट ऑस्मेंट से।
अच्छा, ये कौन है?
ये भी एक अमेरिकन है, फ्लोरेंस में रहता है। बाहर से देखने में लगता है कि बड़ा संस्कारी, कला प्रेमी आदमी है, दुनियादारी से दूर रहता है, अपनी बेटी पैंसी के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा है।
मतलब लॉर्ड वॉर्बर्टन या कैस्पर गुडवुड जैसा नहीं?
नहीं, बिल्कुल अलग। उसमें एक तरह की दूरी है, एक ठंडापन है जिसे इसाबेल गलती से कुछ खास समझ बैठती है।
हाँ, ये जो उसका अपरंपरागत होना है, ये इजाबेल के रोमांटिक मन को भा जाता है। उसे लगता है कि ये आदमी सतही समाज से ऊपर है।
लेकिन यही जेम्स हमें ऑस्मंड का असली चेहरा दिखाते हैं। वो उपन्यास का विलन है पर बहुत सटल तरीके से।
उसके उस अच्छे बर्ताव के पीछे एक बहुत ही ठंडा, मतलबी और कंट्रोल करने वाला इंसान है।
हाँ, उसे इजाबेल की आजादी से, उसके विचारों से कोई मतलब नहीं। वो तो बस उसे अपने कलेक्शन की एक और कीमती चीज समझता है,
दौलत और सोशल स्टेटस बढ़ाने का एक जरिया। एक जगह कहा भी गया है कि वो चाहता था कि इजाबेल का दिमाग उसके दिमाग से ऐसे जुड़ जाए जैसे किसी पार्क से लगा छोटा सा बगीचा।
क्या बात है, ये उसके कंट्रोलिंग नेचर को दिखाता है।
और मैडम मल, उसका क्या रोल है इस सब में?
बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ मिलवाने वाली नहीं थी, वो ऑस्मंड की एक्स लवर है।
ओहो।
और पैंसी, जिसे ऑस्मंड अपनी मरी हुई पत्नी की बेटी बताता है, वो असल में मल और ऑस्मंड की ही बेटी है।
तो ये पूरी एक साजिश थी।
मरल का प्लान था कि इजाबेल की दौलत से पैंसी की अच्छी शादी करवा दे ताकि पैंसी को सामाजिक सुरक्षा मिले जो उसे खुद नहीं मिली। वो खुद भी एक तरह से अतीत में फंसी हुई है।
तो ये दो अनुभवी लोग, ऑस्मंड और मल, मिलकर इजाबेल की मासूमियत का इस्तेमाल कर रहे हैं।
बिल्कुल। और इजाबेल अपनी चाची और रैल्फ की चेतावनियों को अनदेखा करके ऑस्मंड से शादी का फैसला कर लेती है।
और उसे लगता है कि ये उसका अपना फैसला है, उसकी आजादी का सबूत।
हाँ, विडम्बना देखिए, जिस आजादी के लिए उसने अच्छे रिश्ते ठुकराए, उसी आजादी का इस्तेमाल वो अपने सबसे बड़े बंधन को चुनने में करती है।
कहानी फिर कुछ साल आगे बढ़ती है।
हाँ, अब हम इजाबेल को रोम में देखते हैं। एक बड़े से आलीशान महल में रहती है वो।
बाहर से सब शानदार लगता होगा।
हाँ, पर अंदर से इजाबेल एक सोने के पिंजरे में बंद है। जिस आजादी का सपना देखा था वो एक घुटन बन गई है।
ऑस्मंड का असली रंग सामने आ गया है।
बिल्कुल। उसकी वो सुरुचि, वो कल्चर, वो सब अब एक कठोर नियंत्रण का जरिया बन गया है। वो इजाबेल की सोच से, उसकी आजादी से नफरत करता है।
और यही वो मशहूर चैप्टर 42 आता है।
हाँ, हेनरी जेम्स के मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का बेहतरीन नमूना। इसाबेल अकेली बैठी है अंगीठी के सामने और अपने पूरे सफर के बारे में सोच रही है।
उसे एहसास होता है कि वो कैसे धोखे में रही, कैसे उसने ऑस्मंड के बाहरी रूप को सच मान लिया।
वो अपने और पति के बीच की उस गहरी खाई को महसूस करती है। उसे समझ आता है कि ऑस्मंड ने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी।
ये तो दिल तोड़ने वाला सच है।
हाँ, वो सोचती भी है कि उसने जिंदगी देखनी चाही थी और देख ली। अब रुकना नहीं है, आगे बढ़कर कड़वाहट को भी चखना है, खुशियों के साथ साथ।
उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं।
हाँ, अब बस एक ही जिम्मेदारी बची है, अपनी सौतेली बेटी पैंसी का ध्यान रखना, जिसे उसका बाप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
और यहाँ जेम्स उस दौर में औरतों की स्थिति पर भी रोशनी डालते हैं।
बिल्कुल।
कैसे समाज, यहाँ तक कि उसकी दौलत भी उसे आजाद करने की जगह शादी के बाजार में एक कीमती चीज बना देती है।
उसका क्या मानसिक बंधन है, वो किसी असली जेल से कम नहीं।
और ऑस्मंड का वो कला प्रेम भी खोखला है, वो उसे अपनी नैतिकता की कमी को छिपाने के लिए इस्तेमाल करता है।
कहानी क्लाइमैक्स की तरफ तब बढ़ती है जब इंग्लैंड से खबर आती है।
हाँ, कि राल्फ टचेड बहुत बीमार है, मरने वाले हैं, और वो इजाबेल को आखिरी बार देखना चाहते हैं।
और ऑस्मंड,
वो अपने कंट्रोल का चुनौती प्रदर्शन करता है, वो इजाबेल को जाने से मना कर देता है।
लेकिन यही मनाही इजाबेल के अंदर कुछ जगा देती है।
हाँ, शायद पहली बार वो सीधे सीधे ऑस्मंड की मर्जी के खिलाफ जाने का फैसला करती है। और तभी
ऑस्मंड की बहन काउंटेस जेमिनी उसे वो राज बता देती है।
हाँ,
कि पैंसी
असल में मैडम मल की बेटी है।
अब इजाबेल के सामने सब कुछ साफ हो जाता है। उसे समझ आता है कि मैडम मल भी कितनी मजबूर थी और कैसे उसे धोखा दिया गया। विश्वासघात का ये अनुभव उसे तोड़ता है पर शायद थोड़ा मजबूत भी बनाता है।
इस पूरी कहानी में राल्फ का किरदार एक तरह से नैतिक धुरी रहा है।
हाँ बिल्कुल, वो इजाबेल का दर्द समझता है। जब इजाबेल ऑस्मंड के मना करने के बावजूद गार्ड कोर्ट पहुंचती है तो राल्फ से उसकी आखिरी मुलाकात बहुत ही मार्मिक है।
राल्फ आखिरकार अपने प्यार का इजहार करता है।
हाँ, और उसे उस विरासत को देने के अपने फैसले पर बहुत अफसोस होता है। उसे लगता है कि अनजाने में उसी ने इजाबेल के दुख की नींव रखी।
ये एक गहरी समझ का पल है दोनों के बीच।
राल्फ कहता भी है, हमें वैसे ही जीना चाहिए जैसे हम जी सकते हैं, और महान बात यह है कि जिया गया है, मतलब अपने चुनावों के नतीजों को स्वीकार करना।
राल्फ की मौत के बाद जब इजाबेल इंग्लैंड में ही होती है, उसका सामना एक आखिरी बार कैस्पर गुडवुड से होता है।
हाँ, गुडवुड फिर से उससे कहता है, ऑस्मंड को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, एक नई जिंदगी का मौका।
वो उसे किस भी करता है। एक पल के लिए इजाबेल हिल जाती है, एक अलग रास्ते की संभावना दिखती है।
लेकिन अगले दिन पता चलता है कि इजाबेल ने रोम वापस जाने का फैसला कर लिया है।
वो ऑस्मंड के पास लौट रही है।
और यहीं उपन्यास खत्म होता है।
बहुत ही एम्बिगुअस, मतलब अस्पष्ट अंत पर।
हाँ, ये सवाल कि वो रोम क्यों लौटती है, ये सालों से पाठकों को परेशान करता रहा है।
क्या ये हार है या ये नैतिक साहस है?
पैंसी के प्रति जिम्मेदारी या फिर ये उसकी स्वतंत्रता की सबसे जटिल अभिव्यक्ति है कि उसने जो चुना अब उसके नतीजों को भोगेगी, चाहे वो कितने भी दर्दनाक क्यों ना हो।
जेम्स कोई आसान जवाब नहीं देते।
नहीं, और ये अंत उपन्यास के मुख्य थीम स्वतंत्रता बनाम जिम्मेदारी को और गहरा कर देता है।
शायद सच्ची आजादी सिर्फ चुनने में नहीं बल्कि चुनाव के नतीजों के साथ जीने में है।
हाँ, उसका लौटना शायद इसी बात की स्वीकृति है।
उपन्यास के बाकी विषय भी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, अमेरिकी मासूमियत, यूरोपियन अनुभव, पैसे का असर, दिखावा।
और जेम्स के लिखने की शैली, वो जिस तरह इजाबेल के नजरिए से कहानी कहते हैं, किरदारों के मन में उतरते हैं, प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें इजाबेल की यात्रा का गहरा अनुभव कराता है।
विडंबना तो हर कदम पर है।
बिल्कुल,
पढ़ने वाले के मन में एक उदासी सी रह जाती है। हम इजाबेल की शुरुआती चमक देखते हैं और फिर उसका धीरे धीरे मुरझाना।
अंत हमें बेचैन करता है, सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, क्या कोई और रास्ता था? क्या ये निराशा है या मानवीय गरिमा का प्रदर्शन?
बिल्कुल, और शायद यही द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की महानता है, ये आसान जवाब नहीं देता।
ये स्वतंत्रता, चुनाव, जिम्मेदारी, आत्मज्ञान जैसे बड़े सवालों से हमें रूबरू कराता है।
इजाबेल आर्चर यकीनन साहित्य की सबसे यादगार नायिकाओं में से एक है।
हाँ, और ये उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि ये इंसानी हालत की जटिलताओं को दिखाता है। शायद ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली आज़ादी सिर्फ बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सच्चाइयों को समझना और अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाना है।
और ये भी कि आदर्शवाद चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर वो दुनिया की सच्चाइयों और इंसानी स्वभाव के पेचीदगियों से अनजान है तो वो खतरनाक भी हो सकता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।